शांति। मधुबन घर में हरेक बाबा का बच्चा बाबा के साथ का तो अनुभव करता ही है। ये दो शब्द जो हैं, साथी और साक्षी, ये विशेष वर्तमान समय कलयुग के अंतिम चरण में हम सब देख रहे हैं। अचानक के कई खेल हो रहे हैं, आत्माओं के रहे हुए हिसाब किताब कर्म भोगना के रूप में किसी न किसी तरह से हर एक के सामने आते हैं। अगर उसको सहज रीति से पार करना है और उसमें अपनी अच्छा लडोल एक रस अवस्था बनाकर रखना है, तो उसके लिए ये दोनों शब्दों का यथार्थ अर्थ और उसके भाव को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वैसे तो हम सब कहते हैं बाबा हमारे साथ है, कैसे है, क्या अनुभव होता है साथ का, बाबा की श्रीमत, बाबा की स्मृति साथ है या बाबा खुद ही साथ है, उस साथ का अनुभव हर एक अपने अपने नियम अपने अपने ढंग से मैं समझता हूँ करता है। बाबा हम सबको चार कंबाइंड स्वरूप बताते हैं। एक, मैं आत्मा इस शरीर के साथ कंबाइंड हूँ, कितना समीप का साथ है और साथ के साथ साथ एक दूसरे पर आधारित है। अगर शरीर साथ न दे तो आत्मा इस शरीर में होते भी क्या करेगी। अगर आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता, वो भी कोई काम का नहीं रहता। हम सबको ये माध्यम मिला संगम युग पर, जैसा भी जिसको शरीर है, आत्मा का ये बहुत अमूल्य प्रॉपर्टी है। भले इसमें मोह नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना, लेकिन इसकी संभाल हर एक को जरूर रखना चाहिए। क्योंकि इसी माध्यम से आज आप सब मधुबन पहुंच सके हैं, इसी माध्यम से बाबा से मिलन मना लेते हैं, मुरली सुन लेते हैं, योग करते हैं, तो इतना इसको निग्लेक्ट नहीं कर देना कि मेरा तो इससे कोई संबंध ही नहीं है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा कहता है इसकी संभाल करो, इसमें अटैचमेंट नहीं रखो, मोह नहीं रखो। बीमारी है, कोई बात आती है तो उसकी ठीक दवाई करना, समय पर दिनचर्या अनुसार इस शरीर को आराम भी देना, समय पर उसको भोजन भी देना, हर प्रकार की सेवा संभाल करते हुए अनासक्त वृत्ति रखना, तब ये साथ देता है, शरीर हमें साथ देता है, साथ देना चाहिए आत्मा को। तो ये इतना कंबाइंड हो गया है जो आज हम सब देख रहे हैं। मनुष्य आत्माएं तो अपने आप को ही भूल गई, शरीर को ही सब कुछ समझ रही हैं। और बाबा ने हम सबको ये ज्ञान दिया, समझ दी कि आप आत्मा मालिक हैं, शरीर आपका माध्यम है। मालिक बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, कर्म इंद्रियां आत्मा को अपने अधीन न कर दें, इसका हम अभ्यास करें, साथ का अनुभव करें। दूसरा कंबाइंड रूप बाबा कहते हैं आप और बाप। हम आत्माओं का इतना सच्चे दिल का बाबा से प्यार, जो हर घड़ी हर बात में बाबा बाबा, जैसे इतना स्नेह का संबंध है, जो बाबा के सिवाय हम आत्माएं रह ही नहीं सकती। जहां प्यार होता है, संबंध होता है, वहां साथ का अनुभव अपने आप होने लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने साथ मुझ आत्मा को, परमात्मा को कंबाइंड कर लो। कंबाइंड करने से क्या फायदा होगा? अगर मान लो आत्मा कमजोर है, कोई ऐसी कमजोरियां अंदर हैं, लेकिन साथी सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, तो उसके साथ के अनुभव के आधार से कोई भी बात आएगी, कहेंगे कोई बात नहीं, पार हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा साथी है। जितनी भी हलचल की बातें आए, कितने भी तूफान आए, कितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन जिसने बाबा को अपना साथी बनाया है, उसके साथ कंबाइंड रहने का अनुभव है, मैं समझता हूँ उनको कभी भी चिंता नहीं होती। वो बेफिक्र बादशाह है, बेगमपुर के बादशाह है। जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आप सबने सुनी है, पढ़ी है, बाबा का स्मृति मास अभी हम सबके सामने आ रहा है। ब्रह्मा बाबा इतने निश्चिंत, इतने बेफिक्र बादशाह की तरह रहे, इतने सब बच्चों की पालना करते, संभालते, सदा न्यारे प्यारे साक्षी होकर के रहे। उसका मूल कारण तो उनका अटूट निश्चय है। इतना निश्चय था, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा इनका रक्षक है, शिक्षक भी है, रक्षक भी है, और जब बाबा ने इनको अपना बनाया है तो मैं भी बीच में चिंता क्यों करूं। इस निश्चय के आधार से कई प्रकार की परीक्षाएं आई, बच्चों ने भी ली, और आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी परीक्षाओं को बाबा के साथ के आधार से ब्रह्मा बाबा ने बहुत सहज पार कर लिया। कभी भी उनके चेहरे पर तनाव के चिन्ह नहीं आए। हमने दादी जी को प्रैक्टिकल देखा, इतनी सब बातें आती, जब जवाबदारियां यज्ञ की बढ़ती तो दादी से कई बार अखबार वाले पूछते थे आकर के, दादी इतनी बहनें हैं, कुमार कुमारियां हैं, इतनी बड़ी संस्था हो गई, इतना विस्तार है, कई बातें तो संगठन में होती ही हैं, आपको नींद आती है? दादी जी से पूछते थे, तो दादी जी का क्या जवाब होता था? भाई मैं हेड नहीं हूं, हेड बनना माना हेडक हो जाना, हेड तो मेरा बाबा है, उसके बच्चे हैं, उसकी रचना है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो बिस्तर पर जाती हूँ, ऐसे तकिया पर से रखती हूँ, बाबा को बोलती हूँ बाबा गुड नाइट, और एक मिनट में नींद आ जाती है। इतनी निश्चिंत जीवन, इतनी हल्की जीवन, इतनी सब जवाबदारियां होते हुए भी बाबा के साथ के कारण, वो अनुभव था कि बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, करण करावनहार बाबा है, हम अपने ऊपर क्यों चिंता लें। इस स्मृति के आधार से बहुत निश्चिंत स्थिति में रही, बाबा साथ था और बाबा ने साथ का ऐसा अनुभव भी कराया। अव्यक्त होने के बाद लोग समझते इनका बाबा चला गया, लोग तो बहुत उस समय सोचते थे कि अभी संस्था कैसे चलेगी, जिसके आधार से लोग चल रहे थे वही चला गया, आधार निकल गया, अब क्या होगा। लेकिन उनको क्या पता कि आधार और मजबूत हो गया। साकार तो सब जगह पहुंच नहीं सकता था, लेकिन बाबा अव्यक्त हुए, और जहां पर जिस बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, बाबा उसी सेकंड उसके सामने हाजिर हो गए, मदद किया। और दादियों ने भी बाबा को इतना यूज किया, मुझे याद आता है जब 69 में बाबा अव्यक्त हुए हैं, मैं एक डेढ़ साल के बाद ही आ गया 71 में ही, 72 में समर्पित हुआ लेकिन 71 में मधुबन में था। तो कोई भी कार्य हो कहीं पर भी, गुलजार दादी को कभी बाबा के कमरे में बिठा दिया, कभी छोटे हाल में स्त्री हाल में बिठा दिया, जाओ अभी बाबा को पूछ के आओ, बाबा को बुला के ले आओ। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कर रही हूँ, मैं करती हूँ, ये बात आई है, ये प्रश्न आया है, विदेश की सेवाएं करने की निमंत्रण मिलने लगे, कभी भी दादियों ने अपने ऊपर जवाबदारी नहीं ली। बिना बाबा के पूछे, बिना बाबा से स्वीकृति लिए एक भी काम नहीं किया, ऐसे यूज किया बाबा को, बस बाबा साथ है, बाबा ने वायदा किया है, बच्चे मैं कहीं गया नहीं हूँ। क्या कहा बाबा ने, मैंने कमरा चेंज किया है, कमरा चेंज किया है, साकार वतन के कमरे से मैं अव्यक्त वतन के कमरे में चला गया हूँ, जब बच्चे याद करेंगे मैं आपके साथ हूँ। तो दादियों ने बाबा को ऐसा साथी बनाया जो हर बात में बाबा से बिना पूछे, बिना राय, बिना छुट्टी के कुछ भी नहीं किया। साकार माध्यम था, गुलजार दादी यहाँ रहती थी तो डायरेक्ट संदेश मंगाना, उनसे बाबा को निमंत्रण देके बुला लेना, उनसे बात करके फिर आगे बढ़ना, और मान लो दादी नहीं भी थी तो बाबा के कमरे में जाना, बाबा के सामने ऐसे ही बैठ जाना, बस बाबा को ऐसे देखते देखते बाबा के जो प्रेरणाएं, जो शक्ति आती थी दादी उसी समय आके बाहर सुनाती थी, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे ये कहा, ऐसे जैसे डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट मिलन होता था, ऐसा साथ का अनुभव मैंने दादी के, दादियों के जीवन में देखा कि कभी भी बाबा को उन्होंने अपने से जुदा नहीं किया, अलग नहीं किया। तब इतना बड़ा यज्ञ निर्विघ्न रूप से चला। परीक्षाएं तो बहुत आती हैं, जब संगठन है, परिवार है, बड़ा यज्ञ बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न बातें, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ये निश्चय कि बाबा का कार्य है, कराने वाला वो है, उसके बच्चे हैं, उसको अपनी स्थापना का कार्य संपन्न करना ही है, इस निश्चय के आधार से बाबा को साथी बनाया, और साथी बना करके खुद अपनी निश्चिंत और एकरस स्थिति में रही। तो बाबा को साथी बना, ऐसे आप और बाप आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड है, हमारे अंदर नहीं है लेकिन उसकी याद, उसकी शक्तियां, उसका साथ ऐसे अनुभव होता है कि अगर हम चलते फिरते उसकी स्मृति में रहते हैं तो बाबा अपने साथ का ऐसे अनुभव कराता है जैसे मैं तेरे ऊपर एक छतरी की तरह छत्र छाया बन करके साथ रहता हूँ। मैं समझता हूँ आप करते होंगे अनुभव, करते हैं सभी, ये अनुभव बढ़ाना, क्योंकि अंत समय में कई प्रकार के वार होते हैं, एक नहीं कई प्रकार की बातें आती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है दुनिया के अंदर, ईर्ष्या के कारण, कई प्रकार की बदला लेने की भावना, कईयों से कोई हिसाब किताब है पिछले जन्मों के, उसके कारण बहुत सारे पेपर आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, अन्य आत्माओं को हमने दुख दिया है, परेशान किया है, कुछ हिसाब किताब बनाए हैं, तो ऐसे समय पर वो भी सामने आ जा, अचानक आते हैं, सोचा भी नहीं था वो आ जाते हैं सामने। अगर बाबा का हाथ है, उसका हाथ है, श्रीमत की स्मृति है, तो बहुत सहज रीति से हल दिखाई देता है, उस पेपर को बहुत ईजी पार कर लेते हैं। तो इस अनुभव को बढ़ाना कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, मैं और बाप जुदा नहीं हो सकते, जैसे इस समय कोई कहे बाप और दादा को हम अलग कर दे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को अलग किया जा सकता है इस समय, उस समय साकार में जब थे तभी कोई अलग नहीं कर सकता था, पहचान ही नहीं सकते थे शिव बाबा बोला या ब्रह्मा बाबा बोल गया, अभी तो दोनों एक ही हो गए, समान हो गए, हम अलग कर ही नहीं सकते, कोई अव्यक्त वाणी में कर सकता है अलग, ये ब्रह्मा बोला या शिव बाबा बोला, भूल करके अगर बताता तो अलग बात है कि बाप या दादा की रूह रियान, लेकिन मुरली से पता नहीं चलता है कि ये बाबा ने बोला या दादा ने बोला, इतना दोनों एक हो गए, ऐसा साथ। शिव बाबा ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। संगम पर अपने बच्चों को भी बाबा ये अधिकार देता है कि बच्चे ऐसा प्यार का रिश्ता, इतना अच्छा संबंध बाबा को सबसे अधिक प्यारी चीज कौन सी है, सबसे अधिक प्यारा क्या है बाबा को जी, सच्चाई। बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चे तो सब है ना, लेकिन जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं, बहुत सच्चे हैं, अंदर बाहर एक हैं, कैसे भी हैं, लेकिन सच्चाई जो अंदर की है वो सच्चे दिल से बाबा कह दे बाबा आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा, मदद करेगा, साथ देगा, तो बाबा को सच्चाई बहुत प्यारी लगती है। और सच्चाई ये है, सच्चाई क्या है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। आत्मा सत्य है, सत्य के दो अर्थ है ना, एक सत्य माना अविनाशी और एक सत्य माना सच, सच्चे। आत्मा सत्य है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के जब हम बाबा कहते हैं, क्योंकि वो शरीर का बाबा तो है नहीं, और शरीर का आवाज मुख का आवाज तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि बाबा कहता मुझे कान ही नहीं है जो तुम्हारी आवाज में सुन लूं, और अगर तुम्हारी आवाज सुनूं तो आवाज कितनी वैरायटी है, कोई हिंदी में बोलेगा, कोई पंजाबी में बोलेगा, कोई मराठी में बोलेगा, कोई तेलुगु में बोलेगा, कोई तमिल में बोलेगा, किसकी सुनूं मैं और कैसे समझूंगा। तो बाबा कहता है मैं ये मुख की आवाज, साकारी दुनिया की आवाज नहीं सुनता हूं, लेकिन जो सच्चे दिल से स्नेह से भावना की भाषा में बात करते, भावना अंदर की भावनाएं, वो बाबा को पता चल जाती हैं। उनके अंदर की भावनाएं क्या हैं, किस भावना से अंदर बाबा शब्द निकलता है, उस आधार से बाबा साथ का अनुभव कराता है। तो इस कंबाइंड स्वरूप को जितना हो सके संगम पर बढ़ाने से बाबा की एक लाइट की छतरी हमारे साथ रहती है, क्योंकि आत्मा भले बहुत सारे जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते, कल बाबा कहते ना बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी कैसे चलेगी, आगे बढ़ेगी, उसको चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज करने के लिए अगर चार्जर साथ है, आजकल तो पावर हाउस के प्लग की भी जरूरत नहीं रखती, चार्जर अलग साथ रखते हैं, उसके साथ उसको कनेक्ट कर लेते हैं, और जब समय मिलता है तो उसको उसके साथ लगा देते हैं। तो हम सब बाबा के चार्जर को साथ रखते हैं, अलग नहीं करते, और जहां चाहिए ऐसे बैठे हैं, बाबा को ऐसे इमर्ज किया सामने, ज्योति रूप बिंदु रूप बाबा को देखा और अपनी बैटरी उसके साथ कनेक्ट कर दी, वो चार्ज हो गई, फुल हो गई। तो बाबा की शक्तियां अगर आत्मा के साथ हैं, साथ का अनुभव क्या, वो ज्योति बिंदु साथ साथ चलेगी तो भी क्या अनुभव होगा, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है, सबके प्रति शुभ चिंतक है, रहम दिल है, कल्याणकारी है, गति सदगति दाता है। वो संस्कार, वो जो बाबा के निज संस्कार हैं आत्मा के, वो मुझ आत्मा के अंदर इमर्ज हो जाएं, साथ है ना, तो वो इमर्ज हो जाएं संस्कार, तब कहेंगे बाबा मेरे साथ है। अगर बाबा साथ है और मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर नफरत की भावनाएं हैं, द्वेष की भावनाएं हैं, तो साथी कैसा है। इसलिए साथ का अनुभव तो तभी आत्मा कर सकती है जब उसके समान स्वरूप में स्थित है। अब वो कहता मैं पतित पावन हूं, किसी के साथ है। देखो बाबा का एक शब्द सुनते होंगे, अगर लोहा पारस के साथ टच भी कर जाता है तो भी पारस बन जाता है, लोहा भी पारस बन जाता है। अब शिव बाबा सदा पवित्र है, एवर प्योर, एकदम पारस, और आत्मा एकदम लोहे के समान। बाबा के साथ रहेगी तो क्या होगा, संग का रंग लग जाएगा, वो लोहा भी पारस बन जाएगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना तो मैं तो बहुत पतित हूँ, मेरे तो बहुत विकारी संस्कार हैं, मुझे ये होता है ये होता है। बाबा कहता तुम साथ मेरे रहो, मैं आपको अपने संग का रंग लगा दूंगा। तो बाबा के संग का रंग मुझे लग जाए, वो तभी लगेगा जब साथ का अनुभव करोगे। तीसरा एक साथ का कंबाइंड स्वरूप है, मैं इस संगम पर ब्राह्मण हूँ, सच्चा ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ते स्वरूप को भी कंबाइंड करो, अलग नहीं करो, ये भी साथ का अनुभव है। तो कभी भी कोई भी कार्य करते हुए कर्तापन का बोझ नहीं अनुभव होगा, कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त आत्मा हूँ, बाबा ने कराया, समर्पित किया, हल्के हो गए। बाबा कहता है ये कंबाइंड स्वरूप बार बार स्मृति में आए कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, अभी देवता तो नहीं हूँ लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, और मुझे उस संपूर्णता को प्राप्त करना है। अगर मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण कर्मयोगी हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म किया और न्यारे हो गए, कर्म इंद्रियों से कर्म कराया, कर्तापन के भान से अलग हो गए। ये अभ्यास जितना करेंगे उतना कर्म कभी भी बंधन और बोझ नहीं बनेगा। जो कर्मातीत स्टेज की निशानियां बाबा सुनाते हैं, कर्म से अतीत हम नहीं होते, कर्म से अतीत होके कर्मातीत बनेंगे तो शरीर छोड़ देंगे, लेकिन कर्म में रहते हुए बंधन से अतीत हम बन सकते हैं, बंधन न बने, कर्म बंधन न बन जाए, कर्म करो, जो बाबा ने सेवाएं दी है खूब प्यार से करो, अपना समझ के करो, दिल से करो, लेकिन वो कर्म बंधन का रूप न बन जाए, बोझ न लगे, उसके नीचे हम दब न जाए। कराने वाला बाबा है, करा रहा है, जितना करा ले ये मेरा भाग्य है, भगवान कराने। तो ऐसी एक स्मृति जब अंदर रहती है कि कराने वाला करा रहा है, और जो कुछ मैंने इन कर्म इंद्रियों से किया, इस शरीर में प्रवेश करके किया और फिर अलग हो गए, ये फरिश्ता स्टेज बनाने का साधन है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, ये कंबाइंड स्वरूप स्मृति में रहना चाहिए। और चौथा कंबाइंड स्वरूप बाबा कहता है भविष्य में जैसे लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, ऐसे ये स्मृति रहनी चाहिए, संगम पर मैं चतुर्भुज हूं। ये स्मृति बाबा ने, आप सबको याद होगा, जब यज्ञ की स्थापना हुई और यज्ञ में बहन ही अधिक थी, भाई कम थे, और कार्य तो सब प्रकार के करने पड़ते थे, बड़े बड़े बर्तन मांजना, गाड़ी चलाना, चप्पल जूता भी सिलाई करना, बहुत सारे स्थूल काम थे, सब कार्य बहने करें, बिजली का काम है, गाड़ी का काम है, सफाई का काम, कुछ भी हो, तो बाबा उनको एक नशा चढ़ाता था, अरे बच्ची तुम तो चतुर्भुज हो, चार भुजाएं हैं, दो मेल की हैं, दो फीमेल की हैं, माना आत्मा के अंदर ये दोनों संस्कार मेल और फीमेल के हैं, कुछ जन्म मेल के मिलते हैं तो कुछ जन्म फीमेल के मिलते हैं। ऐसे नहीं बहने सोचे कि मैं तो बहने ही रहूंगी, भाई नहीं बनेंगे, या भाई सोचे मेरे अंदर बहनों के कोई संस्कार ही नहीं है, लेकिन 84 जन्म पूरा ही कोई मेल मेल बना हो ऐसा नहीं हो सकता है, कभी तो उसको फीमेल में चोले में जाना पड़ेगा, और कभी बहनों को भी भाई बनना पड़ेगा, इसलिए दोनों संस्कार आत्मा में तो है, आत्मा ही बनती है ना। तो ये ड्रेस जो हमको मिली है, इस ड्रेस में आत्मा भले अभी फीमेल ड्रेस में या मेल ड्रेस में है, लेकिन अगर ये स्मृति रहती है कि मैं चतुर्भुज हूँ, मेरे अंदर नर नारी दोनों के संस्कार हैं, तो कैसा भी कार्य हो, ये नहीं कहेंगे तो बहनों का काम है, ये नहीं कहेंगे तो भाइयों का काम है, मैं आत्मा कर सकता हूँ, इसके भी संस्कार मेरे अंदर हैं। तो इस प्रकार से ये कंबाइंड चारों स्वरूप अगर स्मृति में रहते हैं तो ये साथ का अनुभव है, आत्मा शरीर के साथ है, आत्मा बाबा के साथ है, आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ते स्वरूप में साथ है, और आत्मा चतुर्भुज होकर के श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे कंबाइंड है, विष्णु है वो। तो इस प्रकार की स्मृति साथ की जब रहती है, और ऐसे साथ रहने वाली आत्माएं साक्षी दृष्टा बन सकती हैं। अब साक्षी दृष्टा स्टेज जो है, मैं समझता हूँ आप इस शब्द को सुनते तो होंगे, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे ये बहुत ऊंचे से ऊंची सीट है, और आप सब बच्चों को अगर अपनी स्थिति एक रस बनानी है, नष्टो मोहा बनना है, लगाव झुकाव प्रभाव से मुक्त रहना है तो साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास करो, ज्ञान को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। बाबा ने हम सबको आत्मा का ज्ञान दिया, अपना परिचय दिया, बाबा का परिचय मिला और साथ साथ ड्रामा का बहुत वंडरफुल ज्ञान दिया है। ड्रामा का ऐसा सुंदर ज्ञान है हम सबके पास, इस नाटक के अंदर, ये नाटक है, पहले इसको देखो, ये नाटक चल रहा है, पूरा सृष्टि एक नाटकशाला है और इस नाटकशाला के अंदर ये सूर्य चांद तारा गण ये सारी बत्तियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी बत्तियां इसको लगी हुई हैं। सृष्टि एक मांडवा है और इस सृष्टि रूपी स्टेज पर, इस मांडवे के अंदर हम आत्माएं एक्टर बन करके अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल अदा कर रही हैं। कोई को बड़ा हीरो पार्ट मिला है, कोई को विलियन का भी पार्ट मिलता है। ड्रामा जब होते हैं, कोई नाटक होते हैं, उसके अंदर ये दोनों पार्ट, उनकी दोनों की वैल्यू होती है, दोनों का अपना महत्व होता है। अगर एक जैसा नाटक चलता है तो उसमें मजा ही नहीं आता देखने वालों को। कुछ नीचे ऊपर सीन होंगी तभी लगेगा वाह वाह कितना अच्छा कितना अच्छा। इस बेहद नाटक को कभी साक्षी होकर के देखो, कैसे आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। कोई गाली देने का भी पार्ट बजाता है, कोई महिमा भी करता है, कोई अपमान करता है, कोई बहुत प्रशंसा कर देता है, उसका भी पार्ट है। कोई दुख का पार्ट बजा रहा है, दुख देने का पार्ट बजा रहा है, कोई ईर्ष्या दो इसका पार्ट बजा रहा है और कोई सुख देने के पार्ट बजा रहा है। आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, क्या एक जैसा दसों का पार्ट रहता है? एक पिता के 4 बच्चे होंगे तो कोई एक कहेगा मैं डॉक्टर बनूं, कोई कहेगा मैं एक इंजीनियर बन जाऊं, कोई कहेगा मैं तो खेती बाड़ी वाला ही ठीक हूं, कोई कहेगा मैं तो बिजनेस करूंगा। अब माँ बाप अगर चाहें कि नहीं, मैं परिवार में, सब हमारे परिवार में डॉक्टर्स ही रहे हैं, सब डॉक्टर बन जाए, बन जाएंगे। कितना भी कोशिश करो, उसका अपना पार्ट है, उसका अपना अपना निज संस्कार है, उसी अनुसार वो पढ़ाई करेगा, उसी अनुसार वो प्राप्ति करेगा। माँ बाप कई बार ये अधिकार रखते हैं परिवार के अंदर कि ये मेरे परिवार में ये अलग कैसे हो गया, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा इसको करना चाहिए। और दुख का कारण, शांति का कारण, तनाव का कारण केवल यही बन रहा है कि हर एक आत्मा परिवार में पार्ट बजाते हुए हर एक्टर के पार्ट को न समझ करके अधिकार के रूप में उससे यूज करती है। मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने ये किया, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ ऐसे इसको करना चाहिए। और अगर नहीं करता है तो देखो कितना तनाव पैदा होता है, कितना झगड़ा होता है, कितना एकदम घर के अंदर कलह कलेश हो जाती है। अब इस सबसे बचने का साधन क्या? बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, एक का पार्ट दूसरी आत्मा से नहीं मिल सकता। जैसे इतने सब एक्टर्स हैं, किसी का फेस एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। कोई जुड़वा बच्चे होते उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, थोड़ा बहुत जरूर अंतर होता है, भले शक्ल सूरत सब एक जैसे दिखाई दे, एक दो ऐसे तिल एक दाग निकल आएंगे जो थोड़ा सा अंतर आप कर सकते हैं। जब शरीर में भी सकल में भी एक जैसे नहीं है, और बाबा कहता है इस बेहद नाटक के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा के पार्ट से नहीं मिल सकता। अनादि बना बनाया ड्रामा है और सबका पार्ट अपना अपना है और अपने ढंग से ही वो बजाता है। ये ड्रामा का पाठ जिसने अच्छी तरह से पढ़ा है वो कभी भी अपने आप को किसी के पार्ट को देख करके विचलित नहीं हो सकता। हलचल में आने का एक मूल कारण, जहां तक मैं समझता हूं, ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, कई प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं। लेकिन साक्षी दृष्टा स्थिति फुल स्टॉप लगाने में बहुत मदद करती है। ड्रामा की हर सीन जो भी आ रही है, नथिंग न्यू, कोई नई सीन नहीं है। कल्प कल्प ये सीन हमारे सामने आई है, हम हमने इसको पार किया है, विजयी बने हैं, ये स्मृति हमें कमल फूल समान बना देती है। कमल फूल कहाँ रहता है, कीचड़ भी है, पानी भी है, बड़ा परिवार भी है, लेकिन उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। बाबा ने अपने बच्चों को, प्रवृत्ति वालों को खास ये भी कहा है, प्रवृत्ति वाले सभी हैं, चाहे समर्पित हैं, उनकी भी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में रहते हुए आपकी वृत्ति पर रहे, उसको कहते पर वृत्ति, न्यारी वृत्ति। अगर वृत्ति न्यारी नहीं है तो वो प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी जाल है, जंगल है, फंसा देगी, उलझा देगी। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहती हैं, लेकिन अंदर की वृत्ति उनसे उपराम रहती है, न्यारी रहती है, इसको कहते हैं पर वृत्ति। इस नाटक के अंदर अगर हमको वन नंबर में आना है, विजयी बनना है, अचल अडोल स्थिति रखनी है, तो ये बहुत अच्छी सीट बाबा ने हम सबको दी है। अपने पार्ट को भी देखो, हमारा जो पार्ट चल रहा है, कई प्रकार के पुरुषार्थ करते हुए भी रुकावटें आ जाती हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना योग करने के बाद भी भेद संकल्प विकल्प आ जाते हैं, चाहते थोड़ी है सब, आ जाते हैं। लेकिन अगर साक्षी दृष्टा स्थिति में आया है, खत्म हो जाएगा, परवाह नहीं करनी, चिंता नहीं करनी इसकी, कोई कारण होगा, कोई हिसाब किताब होगा, कुछ गलती हुई होगी, कुछ अलबेलापन होगा, आया, मैं उस अलबेलेपन पर ध्यान दूं, आ गया, क्यों आया, इसको नहीं आना चाहिए, ऐसा हो गया, ऐसा। कई लोग बहुत जल्दी दिल से कष्ट हो जाते हैं, दो बीमारियां बहुत फास्ट फैलती है ना कलयुग के अंदर, अभी तो कोरोना ने सब बीमारियों को दबा दिया, लेकिन वैसे दो बीमारियां बहुत फास्ट फैलती हैं, एक प्रदूषण के कारण कैंसर जैसी भयानक बीमारी, खान पान गलत हो गया, अधिक फर्टिलाइजर के कारण, कीटनाशकों के कारण, जो खाया वो जहर बन गया और खाते ही गांठें बनने लगी और कैंसर का रूप हो गया। पंजाब में देखो आप, सब जानते हो क्या हो रहा है, इतना अच्छी पैदावार, इतना अच्छा अनाज वहाँ होता, लेकिन पंजाब वाले पंजाब का अनाज नहीं खाते हैं, तो दूसरे स्टेट का मंगा के खाते हैं, अपना अनाज दूसरे स्टेट में भेज देते हैं, ऐसा है, कहते हैं इतना इसमें केमिकल, इतनी दवाइयाँ, इतना जहर डालते हैं। एक बार मेरे पास दो तीन सरदार जी आए बठिंडा से, वो बैठ गए और उनके आंखें इतनी गीली, एकदम आंसू भरे हुए, मैं क्या हुआ सरदार जी, कहते हैं भाई मैं तो इतना जहर डालता रहा, दवाइयां डालता रहा, हर घर में कैंसर पेशेंट, अब वो दवाइयां डालनी ही पड़ती, अगर नहीं डालते हैं तो कुछ पैदावार ही नहीं होती, अब दवाइयां रियल हैं या नकली हैं वो भी पता नहीं चलता, उसको टेस्ट तो कर नहीं सकते, वो जो देता है दुकान वाला ले आते हैं, कीड़ा नहीं मरता तो एक बार लाते हैं, दो बार लाते हैं, तीन बार लाते हैं, कितना कर्जा चढ़ जाता है, कितना परेशान होते हैं, कुछ नहीं होता, बेचारा बहुत परेशान था। तो ये जो बीमारी फैली है, कुछ तो हमारे कर्म ऐसे हुए हैं, तो कैंसर की बीमारी भी बहुत फास्ट गति से फैली है, और दूसरा आप देखो आजकल ब्लॉकेज, छोटे छोटे बच्चे, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ये आर्टरी ब्लॉक हो गई, वो ब्लॉक हो गई, 100% ब्लॉक हो गई, क्यों हो रही है, क्योंकि खान पान की परहेज नहीं है। बाबा हम बच्चों को इसको अलौकिक भाषा में लेना, वो बात नहीं हम सोच रहे हैं अभी, अगर इस ब्राह्मण जीवन में किसी आत्मा का उमंग उत्साह कम हो जाता है, बहुत जल्दी निराश, उदास, दिल से कष्ट, तो बाबा कहते हैं इसको ब्लॉकेज हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई। और अगर किसी को थोड़ा सा करने का अहम या बहम आ जाता है, उसका पता नहीं चलता है, वो तो कैंसर की गांठ ऐसी है जो अंत समय में जब लास्ट स्टेज में पहुंचती है तब कहते हैं अभी गया ये, अंदर अंदर मैं ये करता हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, या मेरे साथ इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है, अहम और बहम एक कैंसर की बीमारी फैलती है। ब्राह्मण परिवार में कई आत्माएं अकाले मौत जिनकी हो रही है उसका मूल कारण यही है। चल जाती चले जाती, इतने अच्छे ज्ञानी योगी सेवाधारी सब कुछ करके थोड़े दिन चलते हैं, फिर किनारा हो जाता है, कैंसर हो गया जैसे, अंदर अंदर गांठ बन गई, बेचारा अकाले मौत हो गई उसकी, ब्राह्मण जीवन से चला गया। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, लेकिन दोनों बीमारियों से बचना है तो साक्षी दृष्टा स्थिति का अच्छा अभ्यास करो। मैं आत्मा संकल्प जो चला रहे हैं, बोल बोल रहे हैं, जो कर्म हो रहे हैं, उसमें भी साक्षी होकर के उनको देखूं अलग से, जैसे कोई न्यारा होकर के देखता है, नाटक अगर चल रहा हो, ड्रामा हो रहा हो या कोई ऐसी फिल्म चल रही हो जिसके अंदर एक बहुत अच्छे से अच्छा पार्ट चल रहा है। मान लो जैसे आज रामायण चलती थी तो एक तरफ राम जी का पार्ट, सीता का पार्ट, हनुमान का पार्ट और फिर साथ साथ रावण का पार्ट। देखने वाले अगर साक्षी दृष्टा होकर के एकदम साक्षी होकर के देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा पार्ट बजाया रावण ने, बहुत अच्छा पार्ट बजाया, कैसे उसने अपना रूप बदला, कैसे सीता जी को बहला करके फुसला करके लकीर से बहा लिया और लकीर से बहा लेके सो को अटका बिठा दिया, बहुत सुंदर ढंग से। रामायण जिन्होंने देखी होगी कहते हैं जब अंत में प्राइज मिली ना एक्टर्स को तो रावण को नंबर वन प्राइज मिली थी, उसका पार्ट इतना अच्छा था रावण का पार्ट। अगर ऐसा पार्ट कोई ऐसे साकार में बजाने लगे तो उसको जेल हो जाएगी, लेकिन उस पार्ट को देख करके सबने कहा वाह वाह वाह। ऐसे ही बाबा कहता है इस बेहद नाटक को साक्षी होकर के देखने वाला हाय हाय नहीं करेगा, ऐसा कर रहा है, इतना पुराना महारथी, इतना अच्छा योगी, ये भी ऐसे कर रहा है, ये भी ऐसे कर रहा है, क्या हो रहा है, कहीं तो एकदम उबाल हो जाता है, ऐसा उबाल आ जाता अंदर अंदर, प्रश्न उठ जाते हैं, हलचल हो जाती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी तो बड़ी ऊंची भावनाएं थी, मैंने तो यह भी देख लिया, बेचारे एकदम फांव हो जाते। बाबा कहता साक्षी दृष्टा बनो, हर आत्मा का अपना रोल है, हर आत्मा का अपना हिसाब है, हर आत्मा के अपने संस्कार हैं, हर आत्मा का अपना पार्ट है, आप अगर साक्षी होकर के देखेंगे तो साक्षी दृष्टा स्थिति आपको बहुत खुश रखेगी, हर्षित रखेगी, न्यारा प्यारा रखेगी, और बड़े शुभ चिंतक हो, बहुत प्यार है आपका तो शुभ भावना का दान करो, कुछ योग करो उनके लिए, क्यों क्वेश्चन कर रहे हो ऐसा हुआ वैसा हुआ, कईयों को अंदर क्वेश्चन खुद के उठते हैं और 10 लोगों को उस बात तक पहुंचा देते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। करने वाला तो एक, उसने थोड़ा सा किया और आपने 10 लोगों को बता करके उसका एक बाउंडर बनाया, वातावरण खराब किया, तो मैं समझता हूँ जो करने वाला है हो सकता है वो माफ हो जाए, उसको छूट जाए, लेकिन जिसने वायुमंडल को खराब कर दिया वो कितना बड़ा बोझ ले गया, कितना बड़ा पाप उसके ऊपर चढ़ गया। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति बहुत मदद करती है अचल अडोल अवस्था बनाने में, क्यों क्या कैसे मुलझना नहीं, फुल स्टॉप, बहुत अच्छा नाटक चल रहा है। इस आत्मा के सामने पार्ट आया है, कोई हिसाब किताब इसका पिछले जन्मों का होगा, कई बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंच जाते हैं। बाबा एक बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, वैकुंठ रस मिलता है। अगर ऊंचाई पर चाह रहा है जा रहा है लेकिन जरा भी पांव अगर फिसल गया, जरा भी माया ने कहीं गफलत करा दी, तो इतनी ऊंची स्थिति टॉप की स्थिति तक पहुंच करके और नीचे गिर जाए, क्या होगा हालत उसका, चकनाचूर हो जाता है। अब हो गया वो जिसने किया, जिसके साथ कोई हिसाब किताब था, और हम सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ न्याय नहीं हुआ, इसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, और हम अपनी स्थिति बिगाड़ लें। इसलिए बाबा कहता है साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अपनी टॉप स्थिति पर बैठ करके हर आत्मा के अपने पार्ट को भी देखो, दूसरों के पार्ट को देखो, डबल लाइट स्थिति बन जाएगी, क्यों क्या कैसे के विस्तार में क्यों जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने इतने सब बच्चों के पार्ट को देखा, बहुत अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे, जब पेपर आया ना आर्थिक पैसे का, बहुत आराम से 14 साल तो खाया वो मंडली में पिस्ता बादाम, बहुत प्यार से पले, और जब आबू में आए और पेपर आ गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, खाने के लिए नहीं, भंडारे में कुछ नहीं, बीमारियां हो गई, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। अब बच्चों की स्थिति बाबा देख रहा था साक्षी होकर के, क्या करते हैं ये। जो पक्के बच्चे थे बहुत निश्चय से कहते थे, बाबा जैसे आप रहेंगे वैसे हम रहेंगे, मरेंगे जिएंगे लेकिन यहां से जाएंगे नहीं। और थोड़ा सा जो हलचल में आए, बाबा मैं कमा के ले आऊं, बाबा मैं कुछ कर सकता हूं। अरे बच्चे, विनाशी धन के पीछे तुम ये ब्राह्मण जीवन छोड़ के जाएगा, बाबा का साथ छोड़ के जाएगा। बाबा उसको समझाया जरूर, लेकिन रोका किसी को नहीं, जो तुमको करना है करो, ज्ञान दिया, समझ दी। और जो पक्के थे वो देखो, उन्होंने इस यज्ञ को उसी पेपर से रिजल्ट निकली जो आज इतना बड़ा विस्तार हुआ। अगर पेपर नहीं आता तो दादियां भी बाहर सेवा पर नहीं जाती। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, चरित्र का धन है, तुम्हारे जैसा धनवान थे ही नहीं, और विनाशी धन क्या है, वो तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। इस धन का दान करो, धन दिए धन ना कुटे। दादियों ने पक्का किया कि बाबा ने कहा है, बस कही और दान करना शुरू कर दिया, और वो धन दान किया, वो धन अपने आप दूसरा आ गया। आज कहां से कहां विद्यालय पहुंचा दिया संस्था को। और जो कच्चे थे, थोड़ा भी संशय आया, ये हुआ वो हुआ, प्रश्न उठाया, भाग गए। अब भाग गए तो भी बाबा ने अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। इतना बच्चा अच्छा था, इतना अनन्य था, इतना सहयोगी था, इसने अपने को पूरा समर्पित किया हुआ था, ये चला गया बिल्कुल साक्षी, उस आत्मा का वो पार्ट है। और बहुत शुभ भावनाएं दी कि बच्चा जहां जाए वहां सुखी रहे। पेपर तो सबसे बड़ा है ना, अगर मान लो आज परिवार में एक व्यक्ति कोई ज्ञान छोड़ के चला जाता तो भी कितनी हलचल हो जाती है। कोई बहने अगर चलते चलते 5-10 साल सेंटर पर रह के कहीं दूसरी जगह चली जाती, कितना हलचल, स्टूडेंट में हलचल, सेंटर पर हलचल। लेकिन उस आत्मा का ये पार्ट है, ये ड्रामा का ज्ञान जिसने पक्का किया है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, विस्तार को सार में संभालो, क्वेश्चन नहीं करो। ये ड्रामा में कुछ ऐसे राज हैं जो राज उस आत्मा को इस मार्ग से हटा रहे हैं। आप क्यों हलचल में आते हो? आप अपनी शुभ चिंतक वृत्ति रखो, अपने वातावरण को शक्तिशाली बनाओ, जो पार्ट जो बजाएगा उसका वो पार्ट है, आप स्थिति को हिलाओ नहीं। तो साक्षी दृष्टा स्थिति जो है, अगर नेगेटिव चीज भी दिखाई दे, नेगेटिव हो रहा है यहाँ पर, ये गलत हो रहा है, साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली उसमें भी ये सोचेगी इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है, उस नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर देगी। क्योंकि तो नेगेटिव कुछ है ही नहीं संसार में, हम सोच रहे हैं नेगेटिव, हमारे सोचने से नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अगर साक्षी दृष्टा स्थिति है और साथी हमारे साथ है, तो अकल्याण की सीन में भी कल्याण समाया हुआ है। और ये बाबा ने प्रैक्टिकल कई ऐसे उदाहरण दिखाए हैं, लगता है इसमें क्या कल्याण है, लेकिन बाबा ने दिखाया कि बच्चे ये अकल्याण की सीन में, नेगेटिव सीन में भी बहुत बड़े कल्याण समाये हुए हैं। मैं समय की सीमा है इसलिए ज्यादा नहीं विस्तार करता हूँ, लेकिन मैंने कई ऐसे दृश्य देखे। मान लो मैं बताऊं, उस समय कई बाबा के बच्चे संशय बुद्धि हुए, थोड़ा हलचल में आए, आर्थिक रूप से जब समस्या आई चले गए। अब हलचल में आने वाला तो सोचता है कि इतने समय 14 साल पालना ली, कितना अच्छी योग किए, एकांत में बाबा ने कितना इनको अच्छा सजाया, पालना दी, अभी साथ छोड़ गए पेपर के समय। हलचल में आने वाला तो कितने क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन बाबा साक्षी दृष्टा स्थिति में थे, चलो बच्चे ये गए हैं तो इसमें भी कुछ कल्याण होगा। क्या कल्याण निकला मालूम है क्या हुआ? जितने बाबा के बच्चे गए, बाबा से तो सच्चे दिल का प्यार था, यज्ञ से प्यार था, परीक्षा का सामना नहीं कर पाए और उसके कारण माया के अधीन भी हुए। क्योंकि संसार में जाएंगे तो बाबा क्या कहता है, माया जो है मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठी है, खा जाएगी, तो खा गई उनको माया। लेकिन वो बाबा को अंदर से नहीं भूल पाए, इसलिए जहां जहां भी गए, जब बहने सेवा पर निकली हैं, उनको पता था ये बाबा के वही बच्चे हैं जो हमसार में थे, उन्होंने उनको स्थान दिए, केंद्र खुलवाए, सेंटर बनवा के दिए, बड़े बड़े स्थान, हांगकांग में जाओ, मैं कुछ दिन पहले यहाँ इधर गया था, घाना इधर अफ्रीका की तरफ लेगोस, बाबा के इतने अनन्य बच्चे कितना प्यार से सेंटर बना के दे रहे हैं, सेवाएं करा रहे हैं, गए उसी समय के कई ऐसे हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार वाले सब बाबा 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 दिल से कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ कल्याण था। अगर ये नहीं गए होते तो शायद इतनी सेवाओं का विस्तार नहीं होता, 140 देशों में सेंटर कैसे खुलते। तो ये सब कुछ राज होते हैं, कुछ ड्रामा के अंदर कल्याण की भावी बनी हुई है, और देखने वाला ये क्यों हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, शायद इनके आगे कोई ने इनको पूछा नहीं, कोई इनको बोला नहीं। बाबा कहता बच्चे पुलिस्टा हलचल में नहीं आओ, ड्रामा की हर सीन में बहुत बड़े राज हैं, बहुत अच्छा कल्याण समाया हुआ है, हर सीन को देखो और साक्षी हो जाओ। अगर हर्षित रहना है, अगर अपनी स्थिति को एक रस रखना है, अचल अडोल रहना है, तो साक्षी दृष्टा बाबा को साथी बना लो और हर आत्मा को उसी नजर से देखो, वाह बाबा वाह, वाह आपके बच्चे वाह। क्यों कैसे के प्रश्नों में अगर उलझ गए, जो स्नेही आत्माएं होती ना बहुत नजदीक वाली, उनके पास सामने जब पेपर आता है ना तो होता है हमारा सूक्ष्म लगाव, इनके आगे ऐसा क्यों आ गया, इनको तो कोई पूछता नहीं है, इनको तो मदद नहीं करता है, इनके आगे पेपर है, हमारा सूक्ष्म लगाव, और हम कईयों को दोष देने लगते हैं। साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली आत्मा सोचती है इसका अपना हिसाब किताब है, वो अपने ढंग से पूरा करेगी, अगर कुछ है मदद मैं कर सकता हूँ तो सिर्फ योग का सहयोग दे सकता हूँ, शुभ चिंतक वृत्ति का सहयोग दे सकता हूँ, वो सहयोग दो, ये शुभ चिंतक भावना है, नहीं तो कहीं ना कहीं लगाव दिखाई देता है, फिर लगाव होता है तो झुकाव होता है, प्रभाव होता है, फिर दबाव आ जाता है, बहुत सारी बातें हैं, इसकी विस्तार बहुत है। तो हम सब बाबा को साथी बनाए और साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास करें, तो इस विनाश काल के अंदर अंतिम पेपर जो आएंगे उसमें हम सब बहुत सहज उन पेपर्स को पार कर लेंगे, नहीं तो हलचल होगी, स्थिति नीचे ऊपर होगी, योग टूट जाएगा, बाबा दूर हो जाएगा, पेपर परेशान करेंगे। इसलिए अगर विजयी बनना है, पास होना है, अचल अडोल स्थिति में रहना है, तो ये दोनों शब्द याद रखना और इनका अभ्यास करना, ठीक है। ओम शांति।